श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताजी साइड में दिल्ली। आज सुबह हम श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। उनका जीवन बड़ा विशेष रहा, अद्भुत रहा। जैसे कि हम सुबह कह रहे थे, बचपन से ही, जन्म से ही उन्होंने ऐसे विशेष लक्षण उनके जीवन में प्रकट किए जिससे पता चल सकता था कि आगे चल के ये बहुत अद्भुत कार्य संपन्न करने वाले हैं। उनकी जन्म पत्रिका देखकर ही एक ज्योतिष ने बताया था कि ये बहुत बड़े कार्य करेगा आगे चल के। आम वाला प्रसंग तो आप सब ने सुना होगा, जब वो केवल 2 या 3 साल के बच्चे थे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने थोड़े आम खरीद के लाए थे और वो केवल रखे हुए थे घर में, और बालक बिमला प्रसाद ने जाके एक आम हाथ में लेकर कहा ये मेरा है। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जो कि पास में थे, उन्होंने जाके गंभीर आवाज में, प्रेम से परंतु गंभीर आवाज में बच्चे को बताया कि ये तो बड़ा अच्छा कार्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाए बिना हम कैसे कुछ खा सकते हैं, ये तो पाप है। तो उस छोटे से बच्चे को इतना बुरा लगा कि मैंने एक पाप किया है, भगवान को भोग नहीं चढ़ाया, बिना भोग चढ़ाए मैं इसे खाना चाहता था। उस बच्चे ने उस समय व्रत लिया कि मैं कभी भी जीवन में आम नहीं खाऊंगा, और इस व्रत का पालन उन्होंने आजीवन किया। और श्रील प्रभुपाद जी, मतलब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताया करते थे कि जब भी उन्हें कोई आम देता तो कहते, नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं इसलिए मैं नहीं ले सकता। तो बचपन में यदि कोई ऐसे छोटा बच्चा जो है कुमार अवस्था में ऐसे कुछ कर लेता है, भगवान को जो नहीं भोग चढ़ाया हुआ वो खा भी लेता है, उन्होंने खाया नहीं, ऐसे ही कहा कि ये मेरा है, तो कोई इससे बड़ा अपराध नहीं मानता है। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसे बहुत बड़ा अपराध मान लिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आजीवन इसका पालन किया। आम की बनाई हुई चटनी वो खा लेते थे लेकिन आम कभी नहीं खाते थे, और क्योंकि वो नहीं खाते थे तो उनके शिष्य भी नहीं खाते थे, ऐसे हुआ। तो ये है व्रत। जब हम कोई व्रत लेते हैं तो व्रत का पालन ऐसे किया जाता है। बचपन से ही उन्होंने सबक सिखाया कि कैसे एक वचन जब देते हैं या व्रत लेते हैं तो कैसे उसका गंभीरता से सख्ती से पालन करना चाहिए। जब वो केवल 7 वर्ष के थे तो उन्होंने भगवत गीता के सारे 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे, और इतना ही नहीं भगवत गीता के ऊपर बड़ी अच्छी टीका दे सकते थे, अच्छा प्रवचन दे सकते थे 7 साल की आयु में, जबकि साधारण बच्चे इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। और जैसे धीरे धीरे से आयु बढ़ती गई, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको अपने पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन के कार्य में लगा दिया अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी नाम के ग्रंथ का प्रकाशन करते तो जब कोई ग्रंथ होते वो लिखते और फिर उसकी परीक्षा करने के लिए कि कहीं कोई गलती नहीं हुई है, कोई उसमें बिमला प्रसाद वो आते क्योंकि कई टाइपिंग करते समय कोई गलती नहीं हुई वगैरह देखने के लिए, और मुद्रणालय के कार्य में भी उनको अनुभव काफी मिल गया 7-8 साल की आयु से ही। और ऐसे करते करते उनका जीवन आगे चलता गया। 7 साल की आयु में ही जब उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने कलकत्ता में भक्ति भवन नाम का एक घर का निर्माण किया, तो जहां खुदाई हो रही थी घर घर के निर्माण कार्य के लिए, तो जमीन में से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक कूर्मदेव की मूर्ति मिली छोटी सी। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान का इंतजाम है, तो उन्होंने बिमला प्रसाद को ये पूजा करने के लिए मूर्ति प्रदान कर दी कि तुम इसकी पूजा करो। और साथ साथ वो जब जगन्नाथपुरी गए थे उन्होंने वहां से तुलसी माला लाई और बिमला प्रसाद को उन्होंने हरि नाम दिलवाया, कहा कि तुम हरि नाम लो, और नरसिंह मंत्र भी उन्हें दे दिया। तो ऐसे ही बिमला प्रसाद का बचपन कृष्णमय अवस्था में बीतता रहा। जब वो 11 वर्ष के थे तब तक अपने पिता के साथ वो चैतन्य महाप्रभु के सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर चुके थे, इसलिए जब गृहस्थ भक्त तीर्थ यात्रा में जाते हैं वृंदावन मायापुर आदि, तो बच्चों को साथ में ले जाने से ये संस्कार बहुत अच्छे पड़ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे से उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, लेकिन अपने पढ़ाई के पाठशाला के किताबों में वो रुचि नहीं रखते थे। नरोत्तम दास ठाकुर की कविताएं, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, ऐसे सब भक्त ग्रंथों को वो घर में पढ़ते थे। लेकिन फिर भी जब पाठशाला में उनके अध्यापक उन्हें कोई प्रश्न पूछते थे तो सवाल दे देते थे सही सही, और परीक्षा में भी सबसे अच्छे नंबर लाते थे क्योंकि वो इतने बुद्धिमान थे। एक बार किसी चीज को सुनने पर या पढ़ने पर वो याद रख सकते थे। अपने पाठशाला में विशेष करके वो ज्योतिष और गणित इन दो विषयों में बहुत ही अच्छा थे, और इसलिए आगे चल के उन्होंने व्याकरण आदि में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और जब वो 16 साल के थे तो ग्रंथों को लिखना भी शुरू कर रहे थे ज्योतिष के ऊपर, इसलिए उनको सिद्धांत सरस्वती नाम दिया गया उनके अध्यापकों द्वारा। 16 साल के ही आयु में उन्होंने अपने मित्रों के साथ चिरकुमार सभा नाम की एक संस्था खोल दी, जिसमें केवल तरुण युवक आते थे और तरह तरह के विषयों के ऊपर वो लोग चर्चा करते थे, और वाद भी हुआ करता था, डिबेट, धार्मिक विषयों पे, सामाजिक विषयों पे। और यहाँ इस संस्था में शामिल होने के लिए युवकों को केवल एक व्रत लेना पड़ता था, आजीवन ब्रह्मचर्य का। इसलिए इस सभा का नाम था चिरुकुमार सभा। तो ऐसे तरुण आया करते थे, चर्चा करते थे। तो विमला प्रसाद बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित रहते थे उनके उनके ज्ञान से, उनके तर्क करने के पद्धति से। और ये समानता हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी। भक्ति के लक्षण प्रकट करने के पहले चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ाया करते थे, व्याकरण में बहुत निपुण थे और सबको तर्क और वाद के कार्य में अटका लेते थे। और इतने अच्छे ढंग से वो तर्क करते थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी तर्क करते थे। अनेकों बार बड़े बड़े विद्वानों के साथ भी उन्होंने तर्क किया और उनको हरा दिया। एक बार उनके अध्यापक के एक बहुत बड़े शिष्य थे, वे भी बहुत बड़े विद्वान थे। अध्यापक तो बहुत बड़े विद्वान थे, इनका एक बड़ा शिष्य था, वो भी बहुत बड़ा विद्वान था। उनके साथ किसी एक प्रतिष्ठित सज्जन और नागरिक के घर में एक वाद हुआ। वैसे जैसे आजकल प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे आजकल खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पर्धाएं होती हैं, वैसे उस जमाने में वाद की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। हम ये सुन चुके हैं केशव काश्मीरी आदि के बारे में, रूप नारायण, ऐसे अनेक लोग हुआ करते थे। ब्राह्मणों के बीच में ऐसे हुआ करता था। तो ये बहुत बड़े पंडित थे। तो जब ये वाद हुआ तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस व्यक्ति को इतने अच्छे ढंग से परास्त किया कि उस व्यक्ति ने अपने शारीरिक कार्यों को भी वो रोक नहीं पाए। और ये ऐसे घटना सबके सामने हुई वहां पर, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बुद्धिमत्ता को देखकर। 18 साल की आयु में कलकत्ता के संस्कृत विश्वविद्यालय में उनकी भर्ती हो गई। और जो पाठशाला में पढ़ाते थे उन विषयों के संबंध जो किताबें थे उनमें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि एक बार पाठशाला में विश्वविद्यालय में बैठ गए, प्रवचन सुन लिया, सारी चीजें याद आ गई, तो और कुछ और पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। परंतु जितने भी विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में पुस्तकें थीं, उन सारे के सारे पुस्तकों को पढ़ डाला उन्होंने। और अपने अध्यापकों के साथ भी कभी कभी उनके मतभेद हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग भक्त नहीं थे। तो कभी कभी वो ऐसे कुछ कह देते थे तो उनको रोक के वो कहते थे, नहीं मेरा मत ऐसा ऐसा ये है मत है। तो कभी कभी ये अध्यापक भी कभी नाराज हो जाते थे, परंतु उनके सामने ज्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से वो अपने वाद को प्रस्तुत करते शास्त्रों के आधार पर। और जैसे समय बीतता गया उन्होंने सोचा कि अभी मुझे यदि डिग्री प्राप्त हो गई विश्वविद्यालय से तो अभी विवाह के लिए मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत जोर करेंगे, और जैसे लोगों को पता चल जाएगा कि विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करके ये बहुत बुद्धिमान लड़का बाहर आया है तो विवाह के लिए इतना दबाव आ जाएगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए विश्वविद्यालय में डिग्री पूरी नहीं की। उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी बीच रास्ते में, और छोड़ के फिर वो सोचने लगे अब जीवने के लिए क्या किया जाए। फिर त्रिपुरा के राजा के दरबार में गए और वहाँ पे उनकी राज रत्नाकर कह के एक राजाओं का इतिहास का संपादन करना था, एक ग्रंथ जिसमें त्रिपुरा के राजाओं के इतिहास का वर्णन था, वो कार्य करने लगे। फिर जब उस महाराज की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र जो अब महाराज बने, उनके पुत्र को संस्कृत बंगला आदि सिखाने के लिए वो उस कार्य में नियुक्त किए गए। बाद में वो सब करते करते 10 साल वहाँ रहे, लेकिन इस 10 साल के दौरान वो बीच बीच में कलकत्ता वगैरह भी जाया करते थे। तो ऐसे अवसर भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में और भी भ्रमण किया करते थे, जहाँ वो प्रवचन के लिए जाया करते वो भी जाते थे। और इस समय उन्होंने चातुर्मास आदि का बड़े सख्ती से पालन करना शुरू किया। यही समय था कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना शुरू कर दिया और चातुर्मास के समय केवल हविष्य अन्न खाया करते थे, जो चातुर्मास के समय खाया जाता है, और उसे जमीन पर रख के हाथ पीठ के पीछे रख के, कोई थाली नहीं कुछ नहीं, और जितना मुंह से लाके खाना, जैसे चातुर्मास का व्रत तो सख्ती से पालन करते हैं वो ऐसे खाते हैं, जितना खा सकते हैं एक दो बार में उतना खा के बस उससे संतुष्ट रहते थे। ऐसे करके उन्होंने कई साल बिताए। फिर समय आया कि उन्होंने सोचा अब ये भी कार्य मुझे ठीक नहीं लग रहा है, राजा की सेवा करना। तो उन्होंने राजा से जब बात कही तो राजा इतने प्रसन्न हुए, उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। परंतु उन्हें कहा कि आप छोड़ के जाइए, लेकिन जो भी तनख्वाह मैं आपको दे रहा था वो मैं देता रहूंगा आजीवन। तो 3 साल के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये तनख्वाह स्वीकार की, उसके बाद में ये भी बंद कर दिया। ऐसे समय बीतता गया। और एक बार ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी बंगाल में एक गांव में, जहां ब्राह्मणों और वैष्णवों के बीच में बहुत बड़ा वाद हो रहा था। ये तो अनेक वर्षों से वाद चल रहा था। वाद का विषय ये था कि इनमें से जो जाति ब्राह्मण थे, जो जन्म से ब्राह्मण थे, उनका कथन ये था कि जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण है वही सच्चा ब्राह्मण है, और ऐसे ही लोग गुरु बन सकते हैं और दूसरों को दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ये था कि व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है, और यदि कोई वास्तव में गुरु कृष्ण है, कृष्ण भक्त है, कृष्ण तत्व को जानता है, तो अवश्य वो गुरु बन सकता है। यही कृष्ण तत्ववेत्ता श्री गुरु है। तो जब ऐसे एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया तो भक्ति विनोद ठाकुर को वहां बुलाया गया था, लेकिन वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और बीमार भी थे, तो वो नहीं जा पाए। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा कि तुम जाओ वहां पे और तुम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करो। तो उन्होंने वैसे किया और इतना जोरदार उनका प्रवचन रहा, उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों से प्रमाण रखे सामने और ये सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं, और सच्चा ब्राह्मण कौन है, न केवल जो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, परंतु जिसे ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, जिसके अंदर ब्राह्मण की योग्यता होनी चाहिए। और इतना जोरदार उनका प्रवचन रहा कि उनका यश सारे बंगाल में फैल गया, और इसके बाद उन्होंने जोरदार प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। इसके पहले से ही जब वो जगन्नाथपुरी जाया करते थे बीच बीच में, क्योंकि उनके पिताजी का संबंध जगन्नाथपुरी से काफी गहरा था, वो वहां पे रहे थे जिलाधिकारी बन के, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म भी वहां हुआ था, तो आसक्ति काफी थी जगन्नाथपुरी से। तो वहां गए, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति कुटी के नाम का आश्रम वहां उसकी स्थापना की, और वहां भक्ति विनोद ठाकुर प्रवचन दिया करते थे, साथ साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी प्रवचन दिया करते थे, और पिता पुत्र के प्रवचन भी सुना करते थे, क्योंकि अब पुत्र बहुत विद्वान हो गए थे, तो उन दोनों के प्रवचनों को सुनने के लिए कई लोग आया करते थे। तो वहां एक गोस्वामी थे जो बंगाल से आए थे, राधा रमन चरण गोस्वामी, तो वो भी आते थे सुनने के लिए। परंतु बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर का उनसे बहुत बड़ा मतभेद हुआ, क्योंकि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर जोर न देकर एक नया मंत्र शुरू कर दिया, भज राधे कृष्ण ने भज हरे कृष्ण राधे श्याम, कौन सा वो निताय, भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, तो ये मंत्र शुरू कर दिया। हमारे वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के पास में इसी पंथ का एक मठ है, वहां से दिन भर वो ऐसे माइक पे वो चलाते हैं वो मंत्र, तो दिन भर वो सुनना पड़ता है। लेकिन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी 24 घंटे महामंत्र का कीर्तन चलता है, जिसके कारण फिर वो आवाज ढक जाती है। तो ये भज निताय गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, वो कहते थे कि ये महामंत्र है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके साथ वाद किया कि नहीं, या पहली बात तो ये है कि ये रसाभास है, रस के की मिलावट है इसमें, इसलिए ये सही नहीं है, इस मंत्र को आप नहीं बोल सकते, ये कहाँ से आया मंत्र, इसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, ये अपने मनगढ़ंत ढंग से आप कोई मंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हो, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें शास्त्रों से हरे कृष्ण मंत्र दिया है, तो हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दूसरी बात मतभेद की ये थी कि उन्होंने अपने एक शिष्य को ललिता सखी का वेश पहनाया, कि तुम ललिता सखी जैसी हो, तो ये सखी भे की जो अपसंप्रदाय है वो शुरू हो गया उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये आप बहुत सहज ले रहे हो, सस्ता ले रहे हो, तो ऐसे उनके बीच में बहुत मतभेद होने लगा। तो उस समय से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जोरदार रक्षा करते गए। और आगे चल के जैसे हम सुबह वर्णन कर रहे थे, फिर वो मायापुर में गए, फिर लौट के आए, सन्यास आश्रम को स्वीकार किया, और उस समय धीरे धीरे से उनके शिष्य आते गए। उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की, और विशेष करके अपने पिताजी से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था ग्रंथ प्रकाशन के क्षेत्र में, वो करते गए, अपने पिताजी के पत्रिका को आगे बढ़ाया सज्जन तोषणी, और ये जो अंग्रेजी में छपने लगा तो इसका नाम द हार्मोनिस्ट था। पत्रिकाएं छापते रहे, पुस्तकों को भी लिखते रहे, और उन्होंने ये भी कहा समाचार पत्र भी उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा वैसे जब एक शिष्य ने पूछा जो समाचार पत्र हम कैसे निकालेंगे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ने उत्तर दिया कि हमारे लिए इतना समाचार है कृष्ण के संबंध में, कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं सतत, कि प्रतिदिन की बात तो दूर है, हम प्रति क्षण भी एक समाचार पत्र निकालेंगे कृष्ण का समाचार देने के लिए तो वो भी कम पड़ जाएगा। तो एक के बाद एक बहुत लोग उनके शिष्य बने, गौड़ीय मठ की स्थापना हुई मायापुर में भी, कलकत्ता में भी, और कलकत्ता में उल्टा डांगा जंक्शन नाम के जगह में जब वो एक दिन एक उनके मठ के छत पे बैठकर प्रवचन दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे लोगों को, तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने के एक मित्र ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास ले लिए, और वहाँ पे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को एक जीवन का आदेश दिया। पहली बार उनसे मिल रहे हैं, लेकिन पहले दर्शन में ही उन्होंने आज सारे जीवन भर के लिए एक आदेश दे दिया। आदेश था कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का प्रचार करना चाहिए विदेशों में जाकर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उस समय सोच रहा था कि पहली बार इनसे मिल रहा हूं और सारे जीवन का मुझे आदेश दे दिया है। पहले तो वो हिचकिचा रहे थे एक साधु को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ढोंगी साधु देखे थे, लेकिन उनके मित्र ने कहा कि नहीं नहीं ये वैसे साधु नहीं, आके तो देखो, मिलो तो सही एक बार। और वो गए मिलने के लिए और फिर बहुत प्रभावित हुए। उस समय दीक्षा तो नहीं ली, कई वर्षों बाद उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उनका मन प्रभावित हो गया। मन में उन्होंने ठान लिया कि मैं इन्हीं को मेरा गुरु मानता हूं और आगे चल के इन्हीं से दीक्षा लूंगा। तो ऐसे जोरदार प्रचार करते गए, इसलिए उनको शिष्य सिंह गुरु कहते थे। एक सिंह या शेर के समान वो गरजते थे, अर्थात दूसरे शब्दों में इतने बलपूर्वक वो प्रचार करते थे, निडर होके सही सिद्धांतों का प्रचार करते थे। जब वो युवा अवस्था में थे तो उस समय भी जब वो किसी मायावादी को देखते थे तो उसे पकड़ते थे, और काफी लंबे थे वो, तो ऊपर से देखते थे, तुम ऐसे मायावाद दर्शन का प्रचार क्यों करते हो, तुम क्यों कहते हो कि भगवान कृष्ण का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई धाम नहीं है। तो ऐसे अनेक लोगों के साथ उनको पकड़ के बात करके उनको कृष्ण भक्त बना देते थे। और पुस्तक छापने के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया, कहा कि ये हमारा बृहत मृदंग है। बृहत मतलब बड़ा। जब हम कीर्तन करते हैं, एक मृदंग बजाते हैं, तो मृदंग की ध्वनि थोड़े दूर तक ही पहुंच सकती है। परंतु उन्होंने कहा कि मुद्रणालय ये हमारे लिए बृहत मृदंग है, क्योंकि जो पुस्तकें इस मुद्रणालय में छापी जाएंगी वो तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकती है, इसलिए बृहत मृदंग है। संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार और फैलाना इस बृहत मृदंग से होगा। तो जब श्रील प्रभुपाद उनसे एक बार राधा कुंड में मिले थे, तो प्रभुपाद जी के साथ, उस समय वो अभय चरण डे के नाम से जाने जाते थे, राधा कुंड के तट पर चलते चलते उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि हमने तो इतने बड़े मठ बना लिए, लेकिन हमारे मठ के अंदर अभी लोग केवल आपस में मतभेद कर रहे हैं कि मैं इस कमरे में रहूंगा, तुम उस कमरे में रहोगे, या पद के लिए इत्यादि लोग अभी झगड़ रहे हैं, तो मठ में आग लगी हुई है। अभी यदि परिस्थिति ऐसी हो तो मठ को हम निकाल दें, ईंटों को बेच के हम पुस्तक छापें और पुस्तकों को हम वितरित करते रहें। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया, यदि तुम्हारे पास कभी भविष्य में धन आए तो तुम पुस्तकें छापो और उनका बड़े पैमाने पर वितरण करो विश्व भर में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश हृदय से स्वीकार किया, कभी भूला नहीं ये आदेश। और आगे चल के जब उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो उनके गुरु के आदेश को याद रखा, जो कि अनेक वर्षों पहले उन्हें प्राप्त हुआ था। और वृंदावन में बैठ के प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के पहले और दूसरे स्कंद का अनुवाद किया, उसका तात्पर्य लिखा, और बैक टू गॉडहेड पत्रिका ये भी छापना आरंभ किया, और दिल्ली में जाके वो बेचते थे, वितरित करते थे। और आगे चल के भी संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्था की स्थापना होने के बाद भी उन्होंने अपने शिष्यों को के मन में इतना जोर दिया पुस्तक वितरण के बारे में। और धीरे धीरे ऐसे संस्था, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ या मंदिरों की स्थापना की भारत में, भारत के बाहर भी, बर्मा में, लंदन में भी उन्होंने मठ की स्थापना की। उनके दो सन्यासी शिष्यों को उन्होंने लंदन भेजा प्रचार करने के लिए, लेकिन ज्यादा सफलता वो नहीं प्राप्त कर पाए। थोड़े समय बाद वो लौट के चले आए। तो ऐसे बहुत कम समय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठों की स्थापना की। तो हम कल्पना कर सकते हैं कितना, कैसा, किस तरह का प्रचार उनका था। और फिर जगन्नाथपुरी में भी वो काफी साल रहे, वहां जाते रहे, और जब उनके तिरुभाव का समय आया तो पहले वो जगन्नाथपुरी गए, गोवर्धन पूजा आदि वहाँ मनाई। उन्हें पता चला कि अब मुझे ज़्यादा समय नहीं रहा है इस दुनिया में, मेरा कार्य संपन्न होने को आया है, जिसलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो गोवर्धन पूजा मनाई, गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिन भी मनाया, और गोवर्धन पूजा के दिन के बाद वो रूप रघुनाथ की दो प्रार्थनाएं हैं उनको बार बार दोहराया करते थे, प्रत्याशाम ते त्वं कुरु गोवर्धन पूर्णम। ये रूप रघुनाथ गोस्वामी की प्रार्थना है और रूप गोस्वामी की प्रार्थना निज निकट निवासम देही गोवर्धनत्वम, इन दो पंक्तियों को वो बार 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 दोहराया करते थे, जिससे कि भक्तों को संशय हुआ कि वो अपनी लीलाओं को समाप्त करने की तैयारी में हैं। परंतु पुरी में नहीं रहे, फिर वो वापस कलकत्ता चले गए। उनकी इच्छा थी कि मैं युद्ध भूमि में मेरे प्राण को त्याग दूं, क्योंकि युद्ध भूमि क्या है, शहर है जहां माया सबसे प्रबल रहती है। वहां उन्होंने इतने सारे मठ बनाए थे शहरों में, तो शहर उनके लिए युद्ध भूमि थी। फिर उनके तिरुभाव के पहले दिवस उन्होंने शिष्यों को बुलाया, उनको कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि देखो, मैंने मेरे प्रचार के समय बहुत कठोर बातचीत की, अनेक लोगों के प्रति मैंने अपराध किए, परंतु मेरे मन में कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, केवल भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति स्थापना करने हेतु और गलत दर्शनों का और सिद्धांतों का खंडन करने हेतु मुझे ऐसे बात करना पड़ा, और अपना जो सही नम्रता का स्वरूप है वो उस समय प्रकट हुआ। वो सबसे क्षमा याचना करने लगे और फिर अपने शिष्यों को उपदेश करने लगे कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करना आजकल के समय में बहुत कठिन है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, इस कार्य को कभी छोड़ना नहीं, बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी, परंतु हमें निडर होकर निष्ठावान रूप से श्रद्धा पूर्वक ये प्रचार का कार्य जारी रखना चाहिए। ये सारे उपदेश हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी काल में, इस कलयुग में तो विशेष करके ये और भी मुश्किल बनते जा रहा है। तो उन्होंने जो अपने तिरुभाव के समय अपने शिष्यों को उपदेश दिए, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ऐसे उपदेश देकर फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, एक शिष्य से उन्होंने कहा कि ये भजन तुम गाओ श्री रूप मंजरी पद, क्योंकि जो नयन मंजरी है वो ललिता सखी की सेवा करती है, रूप मंजरी की सेवा करती है, वो रूप मंजरी ललिता सखी की सेवा करती है, ललिता सखी राधा रानी की सेवा करती है, राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, ऐसे परंपरा चलती है, इसलिए उनके लिए रूप मंजरी आराध्य देवी है। तो फिर उन्होंने ये श्री रूप मंजरी पद रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भजन उनके एक शिष्य ने गाया उनके तिरुभाव के समय, और अगले दिन फिर 5 बजे प्रातः काल में उनका तिरुभाव हुआ। तो आइए अभी हम ये श्री रूप मंजरी पद ये प्रार्थना हम गाते हैं। वहाँ किताबें हैं सबके पास? किताबें नहीं हैं? श्री रूप मंजरी पद श्री मोर संपद श्री रूप मंजरी पद श्री मोर संपद
Shri Mora Dharma যেই পদ হইবে সিদ্ধি, অনুকূল হবে বিধি, সেই পদ হইবে সিদ্ধি। Yeah. जाना उजाना शेरी मोरा भजना पूजना Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
मंजरी की जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो अभी हम पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के बाद गुरु पूजा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए और उसके बाद प्रसाद सबके लिए। हरे कृष्णा।